नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है।
जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण और ऑटो क्षेत्र में भारत जापान सहयोग अत्यधिक सफल रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ द ऑनर भी प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय योगदान के अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को महत्व देते हुए संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में आज राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गोलाघाट में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ भी किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ब्रिटिश शासन काल की भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके 3 नए कानून लेकर आई।
ने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर FSL के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले श्री शाह आज असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा के जनशताब्दी से जुड़े साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करेंगे। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय मदद की पहली किश्त में चुनी गई प्रत्येक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रूपए दिए जाएंगे। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनसुख मांडविया 31 अगस्त तक पूरे देश में फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। इस बीच मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने भविष्योन्मुखी एथलीट केंद्रित ई सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। पेरिस में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु PWF विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।